एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में झांक रहे हैं जो आपको इंसानी फितरत और सच की जो पढ़ते हैं ना, उन्हें उधेड़ने पर शायद मजबूर कर दें।
हाँ बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं समकालीन अमेरिकी लेखिका एमी ग्रिफिन के काफी चर्चित उपन्यास द टेल की।
द टेल,
हाँ।
इसे आजकल के मनोवैज्ञानिक फिक्शन में एक बहुत अहम जगह दी जाती है।
सही बात है।
और एमी ग्रिफिन की ना खासियत ही यही है, वो मनोवैज्ञानिक सस्पेंस को बहुत बहुत बारीकी से बुनती हैं। उनकी लिखाई में आपको इंसानी बर्ताव का बड़ा सूक्ष्म जायजा मिलेगा। किरदारों की दिमागी उथल पुथल और भाषा एकदम सधी हुई।
अच्छा,
वो कितना सब्जेक्टिव, मतलब व्यक्ति परक हो सकता है।
हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में।
हाँ, वो भी कमोबेश इन्हीं रास्तों पर चलते हैं।
तो द टेल ने खास तौर पर उन्हें काफी पहचान दिलाई है ना।
हाँ बिल्कुल। द टेल जो 2019 में आया, उसने तो ग्रिफिन को एक अलग ही मुकाम दिया। नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट होना कोई छोटी बात तो है नहीं
जी। बिल्कुल नहीं।
ये उपन्यास थोड़ा थोड़ा आपको पैट्रिशिया हाईस्मिथ या डैफ्ने डू मॉरियर की याद दिलाएगा।
अच्छा, वो क्लासिक सस्पेंस वाली फील।
हाँ, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल आज का है, एकदम मॉडर्न। तो आज हम इसी उपन्यास के ताने बाने को, इसकी परतों को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, देखते हैं कि ये कहानी कैसे खुलती है, इसके किरदार कितने उलझे हुए हैं, और ये धोखे और सच्चाई पर क्या क्या सवाल खड़े करती है।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उपन्यास की दुनिया से। कहानी हमें ले जाती है आज के न्यूयॉर्क शहर।
न्यूयॉर्क,
माहौल है कॉर्पोरेट जासूसी का, हाई स्टेक कंसल्टिंग का। मतलब बाहर से एकदम चमकदार, लेकिन अंदर से शायद उतना ही ठंडा, हिसाब किताब वाला।
और इसी दुनिया में है हमारी मुख्य किरदार मार्था हेज।
मार्था हेज, क्या कमाल का किरदार है। उसे आप एक तरह की मानव झूठ पकड़ने वाली मशीन कह सकते हैं।
अच्छा, लाई डिटेक्टर।
हाँ बिल्कुल। उसके पास एक गजब की सलाहियत है। वो लोगों के चेहरे के बारीक से बारीक भाव, उनके शरीर की भाषा, यहाँ तक कि आवाज के हल्के से उतार चढ़ाव को भी पढ़ लेती है।
मतलब वो देख सकती है जो शायद हम और आप कभी नोटिस भी ना करें।
बिल्कुल। और यही काबिलियत उसकी जिंदगी का जैसे केंद्र बन गई है। इससे उसे पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, लेकिन साथ ही साथ एक गहरा अकेलापन भी। उसकी नजर में हर बातचीत एक पहेली है, हर इंसान बस संकेतों का एक कलेक्शन। उसे पूरा यकीन है कि वो हर नकाब के पीछे का सच देख सकती है।
उसकी दुनिया ऐसी निश्चितता, ऐसी सर्टेनिटी पटकी है।
हाँ, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मार्था को एक बहुत अमीर और ताकतवर परिवार, क्रॉफ्ट परिवार, अपने यहाँ काम पर रखता है।
क्रॉफ्ट परिवार।
हाँ, परिवार की मुखिया है एलिनोर क्रॉफ्ट। वो चाहती हैं कि मार्था उनके इकलौते बेटे जूलियन की मंगेतर एलारा वेन्स की जांच करे।
जांच? क्यों?
उन्हें शक है। उन्हें लगता है एलारा वो नहीं है जो वो दिखाती है। शायद वो पैसों के पीछे है, एक चालाक धोखेबाज।
अच्छा, तो मार्था का मिशन तय हो जाता है।
हाँ, एलारा का ये जो परफेक्ट दिखने वाला मुखौटा है ना, उसमें कोई दरार ढूंढना, वो टेल यानी वो छोटा सा इशारा खोजना जो उसके धोखे का पर्दाफाश कर दे।
और मार्था को तो लगता होगा ये उसके लिए बस एक और केस है।
बिल्कुल, उसे लगता है ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिर होती है एलारा से उसकी पहली मुलाकात, एक डिनर पार्टी में।
और
मार्था अपनी पूरी क्षमता लगा देती है एलारा को पढ़ने में, उसके हाव भाव, उसकी मुस्कान, बातें, सब कुछ। और नतीजा, मार्था को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
क्या मतलब?
एलारा में कोई टेल नहीं है, जरा भी नहीं। कोई घबराहट नहीं, झूठ का कोई निशान तक नहीं। वो एकदम शांत, सहज, संतुलित, जैसे कोई शांत झील हो जिसकी गहराई का पता ही न चले।
अरे, ये तो मार्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा।
जोर का झटका है। उसकी पूरी दुनिया, जो दूसरों को पढ़ने की उसकी काबिलियत पर टिकी थी, वो जैसे हिल जाती है।
और यहीं से उपन्यास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना।
हाँ बिल्कुल, कि तब क्या होता है जब कोई ऐसा इंसान जिसका पूरा वजूद ही दूसरों के आर पार देखने पर टिका हो, किसी ऐसे से टकरा जाए जिसके आर पार देखा ही न जा सके।
क्या एलारा वाकई इतनी माहिर धोखेबाज है कि वो मार्था जैसी एक्सपर्ट को भी चकमा दे दे, या फिर कहानी कुछ और ही है?
यही सवाल, यही उपन्यास की रीढ़ है। और इसी सवाल के आसपास मार्था का किरदार और गहरा होता जाता है।
हाँ, बताइए उसके बारे में थोड़ा और।
देखिए, वो बेशक बहुत तेज दिमाग की है, उसकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो खुद को बहुत बचा कर रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी ये पढ़ने की क्षमता शायद बचपन के किसी सदमे, किसी ट्रॉमा से निपटने का उसका अपना तरीका है, एक डिफेंस मैकेनिज्म।
अच्छा।
उसे अपनी इस अनोखी प्रतिभा पर बहुत नाज है और उसे चीजों पर नियंत्रण, कंट्रोल रखने की एक गहरी जरूरत महसूस होती है। उसे लगता है सच हमेशा उसकी मुट्ठी में है।
और उपन्यास में उसकी यात्रा इसी आत्मविश्वास से शुरू होती है। उसे लगता है वो एलारा का राज चुटकियों में खोल देगी।
हाँ, लेकिन एलारा की ये पारदर्शिता जिसमें कुछ नजर ही नहीं आता, वो मार्था के लिए एक आईने की तरह काम करती है। उसे अपनी ही सीमाएं दिखने लगती हैं।
मतलब ये बाहरी जांच कब उसकी अंदरूनी कश्मकश बन जाती है पता ही नहीं चलता।
बिल्कुल। और जैसे जैसे एलारा को समझने का उसका जुनून, उसका ऑब्सेशन बढ़ता है, उसकी अपनी जिंदगी जैसे पटरी से उतरने लगती है।
कैसे?
वो अपने करीबी लोगों को, जैसे अपनी बहन को, गलत समझने लगती है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो शक और वहम में घिर जाती है।
तो जो उसकी प्रतिभा थी वही उसकी कमजोरी बन जाती है।
हाँ बिल्कुल। उसका सफर एक तरह से गुरूर से विनम्रता की ओर है। सिर्फ देखने पर यकीन करने के बजाय शायद भरोसा करने की जरूरत को समझना।
और दूसरी तरफ है एलारा वेन्स, जो इस उपन्यास का सबसे बड़ा रहस्य है।
एलारा वेन्स? हाँ, पहली नजर में वो एकदम परफेक्ट लगती है।
परफेक्ट किस तरह से?
मतलब समझदार, खूबसूरत, रहम दिल और जूलियन से बेहद प्यार करने वाली। ऐसा लगता है जैसे वो एक खुली किताब है, लेकिन असल में वो कुछ भी जाहिर नहीं करती।
ग्रिफिन ने उसे किसी टिपिकल विलेन की तरह नहीं दिखाया है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ऐसी मौजूदगी के तौर पर पेश किया है जो अस्थिर कर दे, जिसकी ताकत शायद उसके कुछ न करने में है, उसकी शांति में है।
पर उसकी प्रेरणा क्या है? मतलब वो चाहती क्या है?
जाहिर तौर पर तो यही लगता है कि वो जूलियन से प्यार करती है और उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन उसके अंदर वो टेल्स क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्या ये बहुत गहरा धोखा है या कोई दुखद वजह है इसके पीछे?
उपन्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता है और खासकर अंत में जब उसके अतीत का पर्दा उठता है, तो वो किसी खलनायिका से ज्यादा एक सर्वाइवर, एक पीड़ित के तौर पर सामने आती है।
अच्छा।
हाँ, वो इस आम धारणा को ही चुनौती देती है कि हर किसी के पास छुपाने को कुछ न कुछ जरूर होता है।
और इन दोनों के बीच फंसा है जूलियन क्रॉफ्ट।
इंद्र है, कह सकते हैं।
एक तरफ उसका शक्की परिवार, दूसरी तरफ वो औरत जिससे वो प्यार करता है। मुश्किल स्थिति है।
बहुत। उसमें वफादारी तो है, लेकिन शायद थोड़ी नासमझी भी, क्योंकि वो हमेशा दौलत के साये में पला बड़ा है।
तो उसकी यात्रा कैसी है उपन्यास में?
उसकी यात्रा भी एक तरह से आंखें खुलने जैसी है। शुरू में वो अपने परिवार के शक को वहम कहकर टाल देता है, लेकिन मार्था की जांच वो धीरे धीरे उसके मन में भी शक के बीज बो देती है।
उसे समझ नहीं आता कि किस पर यकीन करें।
हाँ, उसे अपने परिवार के कंट्रोल करने वाले स्वभाव का भी सामना करना पड़ता है। मार्था के साथ उसका रिश्ता भी तनाव भरा हो जाता है। आखिर में उसे एक फैसला लेना पड़ता है, और वो फैसला कहानी का रुख मोड़ देता है। वो दिखाता है कि असली झूठ कौन बोल रहा था।
अच्छा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है?
शुरू में मार्था आत्मविश्वास से भरी है।
हाँ बिल्कुल।
शुरू में हम मार्था को उसकी कामयाबी की शिखर पर देखते हैं। वो एक बड़ी कॉर्पोरेट धोखाबड़ी का पर्दाफाश करती है, एकदम कॉन्फिडेंट, नियंत्रण में।
और तभी एलेनोर क्रॉफ्ट उससे मिलती हैं।
हाँ, और एलारा वेन्स की जांच का काम सौंपती हैं। मार्था इसे एक रूटीन केस समझकर ले लेती है।
लेकिन फिर आता है वो पहला झटका, एलारा से मुलाकात।
हाँ, जब उसे एहसास होता है कि उसमें कोई टेल नहीं है। ये पेशेवर चुनौती कब मार्था का निजी जुनून बन जाती है पता ही नहीं चलता। यहीं से असल खेल शुरू होता है।
इसके बाद मार्था पूरी तरह जांच में जुट जाती है,
पूरी शिद्दत से। वो एलारा के अतीत को खंगालती है, उसकी मामूली नौकरियां, मृत परिवार, कोई करीबी दोस्त नहीं, सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है।
लेकिन कुछ ठोस नहीं मिलता?
कुछ नहीं। मार्था अपने सारे हथियार इस्तेमाल करती है। पीछा करना, बैकग्राउंड चेक, ऐसी सामाजिक स्थितियां बनाना जिनसे एलारा दबाव में आकर कोई गलती कर बैठे, लेकिन सब बेकार।
एलारा हर बार बच निकलती है।
बच निकलना भी क्या कहें, वो हर बार शांत, ईमानदार जवाब देती है जिनसे कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो वो किसी कांच की दीवार के पीछे है।
तो ये तनाव बढ़ने लगता होगा
बहुत ज्यादा। मार्था की ये पेशेवर नाकामी अब उसकी निजी जिंदगी पर हावी होने लगती है। वो वहम का शिकार हो जाती है। उसे हर तरफ धोखा ही धोखा नजर आता है।
अपनी बहन के साथ भी रिश्ते खराब हो जाते हैं।
हाँ, उसके साथ भी उसके रिश्ते में दरार आ जाती है। कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंचती है, क्रॉफ्ट परिवार के देहात वाले घर में।
वहां क्या होता है?
वहां मार्था एलारा को तोड़ने के लिए एक खतरनाक योजना बनाती है। वो घर की एक कीमती चीज की चोरी का नाटक रचती है और इल्जाम एक नौकर पर डाल देती है,
ये देखने के लिए कि एलारा दबाव में कैसे रिएक्ट करती है।
लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है।
कैसे?
एलारा बिल्कुल शांत बनी रहती है, बल्कि वो परेशान जूलियन को संभालती है और जिस नौकर पर इल्जाम लगा है उसके लिए हमदर्दी भी दिखाती है।
और मार्था?
मार्था की चालबाजी सबके सामने आ जाती है। वो अस्थिर, यहाँ तक कि थोड़ी खतरनाक लगने लगती है। जूलियन गुस्से में मार्था को केस से हटा देता है।
ये तो मार्था के लिए बहुत बड़ी हार हुई।
हार और बेइज्जती दोनों, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है।
तो वो क्या करती है?
अपमानित लेकिन हार न मानने वाली मार्था अब एक आखिरी हताश कोशिश करती है एलारा के अतीत की तह तक जाने की। वो एक छोटे गुमनाम से कस्बे तक पहुंचती है
जहां एलारा का बचपन बीता था।
हाँ, वहीं। और वहां उसे जो मिलता है वो किसी धोखे का सबूत नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है।
सच्चाई?
क्या पता चलता है उसे?
उसे कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड मिलते हैं, स्थानीय लोगों से बात होती है और पता चलता है कि एलारा बचपन में एक भयानक पारिवारिक हादसे की अकेली सर्वाइवर थी।
ओह!
इस हादसे ने उसे PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के एक बहुत ही रेयर फॉर्म के साथ छोड़ दिया था।
तो उसकी वो शांति, वो तेल की कमी, वो धोखे का नकाब नहीं, बल्कि उस गहरे सदमे से निपटने का एक मनोवैज्ञानिक कवच था, एक तरह का भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट, जिसने उसे बाहरी दुनिया के प्रति लगभग सुन्न बना दिया था।
हे भगवान, मतलब जिस राक्षस का मार्था शिकार कर रही थी वो तो खुद एक शिकार थी।
बिल्कुल। और इतना ही नहीं, असली रहस्य तो अभी बाकी था।
और क्या?
मार्था को पता लगता है कि क्रॉफ्ट परिवार का कारोबार ही उस आर्थिक बर्बादी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था जिसकी वजह से एलारा के परिवार के साथ वो हादसा हुआ था।
क्या मतलब क्रॉफ्ट परिवार को एलारा पर शक इसलिए नहीं था कि वो पैसे के पीछे थी,
बल्कि उन्हें डर था कि कहीं वो सालों बाद बदला लेने तो नहीं आई।
ये तो कहानी का पूरा नजरिया ही बदल गया
पूरी तरह। इस सच्चाई के साथ मार्था लौटती है, लेकिन अब उसका इलादा एलारा का पर्दाफाश करना नहीं है, वो सीधे एलेनोर क्रॉफ्ट का सामना करती है।
और उपन्यास का आखिरी टकराव कैसा है?
बहुत शक्तिशाली लेकिन अजीब तरह से शांत। मार्था एलेनोर को पढ़ने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करती, वो बस तथ्य सामने रखती है। और सबसे बड़ी बात
क्या?
वो अपनी गलती मानती है, अपनी भयानक भूल को स्वीकार करती है।
तो फिर वो क्या करती है?
उसका आखिरी कदम सहानुभूति का है। वो क्रॉफ्ट परिवार को उनके अपने झूठ और डर के साथ जूझने के लिए छोड़ देती है और चुपचाप एलारा और जूलियन की जिंदगी से निकल जाती है।
और उसकी कंसल्टिंग फर्म?
वो भी बंद कर देती है। उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि मार्था एक पब्लिक पार्क में बैठी है, लोगों को देख रही है, लेकिन अब विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि शायद सिर्फ इंसानों के तौर पर।
उसने अपनी वो निश्चितता खो दी है।
हाँ, निश्चितता का वो तोहफा खो दिया है, लेकिन शायद पहली बार सच्चे मानवीय जुड़ाव का एक दरवाजा खुला पाया है।
ये कहानी वाकई कई गहरे मुद्दों को छूती है। सबसे अहम तो मुझे ये धारणा बनाम वास्तविकता वाली बात लगी, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी।
हाँ बिल्कुल। मार्था का ये अटूट विश्वास कि वो बाहरी दिखावे के पार का सच देख सकती है, एलारा का किरदार उसे पूरी तरह तोड़ देता है।
ये उपन्यास जैसे कहता है कि हम इंसानी रिश्तों में जिसे सच समझते हैं वो अक्सर हमारी अपनी सोच, हमारे डर, हमारी इच्छाओं का आईना होता है।
सही बात है, कोई एक मुकम्मल सच शायद होता ही नहीं। और इसी से जुड़ा है दूसरा अहम मुद्दा, दूसरों को आंकने जज करने की हमारी फितरत।
हाँ, वो निर्णय की भ्रामकता वाली बात, फैलेसी ऑफ जजमेंट।
मार्था की जो प्रतिभा थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। दूसरों को पढ़ने का उसका आत्मविश्वास उसे बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है, उसे अपनी गलती की गुंजाइश नजर ही नहीं आती।
ये कहानी जैसे एक चेतावनी है कि जब हम किसी को जज करते हैं तो हम असल में उसे समझने या उसके साथ हमदर्दी रखने का रास्ता ही बंद कर देते हैं।
बिल्कुल। और उपन्यास सदमे मतलब ट्रॉमा के असर को भी बहुत संवेदनशीलता से दिखाता है।
हाँ, कैसे गहरे जख्म सालों तक अक्सर अनदेखे तरीके से इंसान पर असर डालते हैं। एलारा की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो इसका एक बहुत मार्मिक चित्रण है।
और ये समाज की उस आदत पर भी सवाल उठाता है कि जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं, हम उन्हें तुरंत कोई लेबल दे देते हैं, धोखेबाज, अजीब, कुछ भी।
और वो धोखा और आत्मधोखा वाला थीम भी, डिसेप्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन।
हाँ, वो भी बहुत मजबूत है। मार्था दूसरों में धोखा ढूंढ रही है, लेकिन सबसे बड़े धोखे में तो वो खुद है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, सच जान सकती है।
और क्रॉफ्ट परिवार, वो अपनी इज्जत, अपनी विरासत बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है।
कहानी यही दिखाती है कि अक्सर भारी धोखे हमारे अंदर के गहरे आत्म धोखे का ही अक्स होते हैं।
और एमी ग्रिफिन की लिखने की शैली, वो भी इस उपन्यास के असर को कई गुना बढ़ा देती है।
हाँ, भाषा बहुत सटीक है, थोड़ी क्लिनिकल सी लगती है और एक अजीब सा घुटन भरा क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है।
ये बिल्कुल मार्था के दिमागी हालात को दर्शाती है, बाहर से शांत, अंदर से उबलती हुई।
बिल्कुल, और क्योंकि कहानी पूरी तरह मार्था के नजरिए से यानी फर्स्ट पर्सन में कही गई है।
हाँ, तो हम पाठक भी जैसे उसकी इस जुनूनी खोज का हिस्सा बन जाते हैं।
हाँ, हम भी उसी के साथ सोचते हैं, उसी के साथ शक करते हैं। मार्था एक तरह की अविश्वसनीय कथावाचक, अनरिलायबल नैरेटर है।
इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर झूठ बोल रही है।
नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया को देखने का उसका अपना नजरिया ही दोषपूर्ण है। हम सिर्फ वो ही देख पाते हैं जो वो देख रही है, और उसकी सोच हमें भी प्रभावित करती है।
भाषा भी कमाल की है, छोटे कसे हुए वाक्य जैसे कोई रिपोर्ट लिख रहा हो, लेकिन उसी के नीचे भावनाओं का एक समुंदर।
हाँ, और जैसे जैसे मार्था का जुनून बढ़ता है, उसके वाक्य भी टूटने लगते हैं, उसकी बेचैनी झलकती है।
और प्रतीकात्मक का इस्तेमाल भी है, सिंबलिज्म।
हाँ है, आईने और चमकती सतहें बार बार आती हैं, जो शायद आत्म साक्षात्कार या विकृत धारणाओं का प्रतीक है। पोकर का खेल, जिससे शायद उपन्यास का शीर्षक भी जुड़ा है, टेल।
हाँ, पोकर में वो अनजाने इशारे।
हाँ, वो दिखाता है कि कैसे इंसानी रिश्ते भी कई बार एक रणनीतिक खेल बन जाते हैं, एक ऐसा खेल जिससे एलारा अपनी शांति से पूरी तरह फेल कर देती है।
और गिफ्निन ने इशारों, मतलब फोरशेडोइंग का भी अच्छा इस्तेमाल किया है।
बहुत बखूबी। एलारा की असली कहानी और क्रॉफ्ट परिवार के राज के छोटे छोटे सुराग पूरी कहानी में बिखरे हुए हैं। शुरू में एलारा की जिस शांति को मार्था उसकी चालाकी समझती है, बाद में वही उसके सदमे के लक्षण के तौर पर सामने आती है।
कुछ यादगार पंक्तियां भी होंगी।
है, बिल्कुल। जैसे मार्था का शुरुआती मंत्र, एवरीवन हैज अ टेल, हर किसी का कोई ना कोई इशारा होता है। या एलारा की सीधी चुनौती, यू आर लुकिंग सो हार्ड फॉर द लाई, तुम झूठ को इतनी शिद्दत से ढूंढ रही हो। और अंत में मार्था का वो एहसास, द साइलेंस हैड अ ट्रूथ ऑफ इट्स ओन, खामोशी का भी अपना एक सच था जो उसके बदलाव को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर द टेल एक ऐसा उपन्यास है जो पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ता है।
हाँ, बिल्कुल। शुरू में एक बेचैनी, एक रहस्य का एहसास होता है जो धीरे धीरे आत्ममंथन में बदल जाता है। ये एक तनाव भरा, पकड़ बनाए रखने वाला अनुभव है।
और कहानी का अंत वो भावनात्मक और नैतिक रूप से झिंझोड़ देता है।
हाँ, कहीं ना कहीं पाठक भी महसूस करता है कि वो भी मार्था के साथ मिलकर एलारा को गलत समझने में भागीदार रहा है।
बिल्कुल, इसका स्थायी प्रभाव शायद सहानुभूति पर जोर देना है। ये उपन्यास हमें मजबूर करता है कि हम दूसरों के बारे में सतही संकेतों के आधार पर कितनी जल्दी राय बना लेते हैं, और हमें अपनी इस आदत का सामना करना चाहिए।
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना समझते हैं, उनके अनकहे इतिहास के बारे में कितना जानते हैं।
ये लोगों को पढ़ने के हमारे गुमान को तोड़ता है और समझने की ज्यादा मुश्किल लेकिन ज्यादा मानवीय चुनौती पेश करता है।
एक सवाल जो शायद पाठक के मन में रह जाता है, हम दूसरों में जो देखते हैं वो कितना उनका अक्स होता है और कितना हमारी अपनी सोच का प्रक्षेपण। ये उपन्यास निश्चितता की तलाश छोड़कर अनिश्चितता और शायद इंसान की नाजुकता, वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने की तरफ एक इशारा करता है।
अंततः ये कहानी हमें सहानुभूति के महत्व और दूसरों को वास्तव में जानने की हमारी सीमाओं की याद दिलाती है।
और ये सतही निर्णय से परे देखने और मानवीय जटिलता को स्वीकार करने की चुनौती देती है कि हर इंसान के अंदर एक पूरी कहानी छिपी हो सकती है जिसे समझने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।